आहान को बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। उसका बच्चा न जाने कैसा होगा, वो कितना प्यारा होगा। कहीं वो आहान के जैसा मासूम होगा या रौनक के जैसा शरारती। बार बार उसके दिमाग में यही विचार घूम रहे थे। लेकिन उससे पहले उसे रौनक को भी प्रेगनेंसी की खबर देनी थी, ताकि वो अपना ख्याल अच्छे से रख सके। फिर अपने आप को मजबूत करते हुए उसने रश्मि को ये बात बताने का फैसला किया। उसने सोचा कि सबसे पहले वो रश्मि दीदी को ये जानकारी दे देगा, उसके बाद रश्मि दीदी ही उसकी मदद करेंगी, क्योंकि रश्मि रौनक को अपनी बहन मानती है। रौनक की वो बड़ी बहन है, इसलिए वही उसकी मदद अच्छे से करेगी। ये सोचते हुए बेचैन होकर वो इस वक्त रश्मि के सामने मौजूद था, और पिछले 15 मिनट से उसने रश्मि को एक जगह बैठाया हुआ था। और रश्मि आहान को घूर घूर कर देखते हुए चिढ़कर बोली, आहान, आखिरकार तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? पिछले 15-20 मिनट हो गए, तुम लगातार या तो अपने नाखून चबा रहे हो या अपनी उंगलियां मरोड़ रहे हो, लेकिन बात क्या है? तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? तुम्हें कुछ बात करनी भी है या नहीं, मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी हरकतें देखकर चिढ़ रही हूँ। अब आहान हैरान होकर मन में सोचने लगा कि वैसे तो रश्मि दीदी इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, क्या उन्हें रौनक के लक्षणों से पता नहीं चल रहा है कि वो माँ बनने वाली है? लेकिन आहान को इस बात का कुछ पता नहीं था कि ना तो रौनक को किसी तरह की उल्टियाँ आई थीं और ना ही उसे चक्कर या कुछ और महसूस हो रहा था। उसे आखिरी बार चक्कर सिर्फ अस्पताल में आए थे जब ये पता चला था कि वो माँ बनने वाली है। अब आहान को एक बार फिर गहरी सोच में सोचता हुआ देखकर रश्मि झल्लाकर उठी और उस पर बरसते हुए बोली, आहान बच्चे, वैसे ही घर का मुझे इतना सारा शादी का काम करना है, इतनी सारी तैयारी करनी है, और तू है कि यहाँ पर मेरा समय बर्बाद करने के लिए बैठ गया है। ये बोलकर आहान के सर के बालों को नोचते हुए रश्मि वहाँ से उठ खड़ी हुई। जैसे ही वो वहाँ से उठ खड़ी हुई, रश्मि को ऐसे चिढ़ा हुआ देखकर रौनक जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी। रौनक के हाथ में उस वक्त एक बड़ा सा बाउल था जिसमें वो गुलाब जामुन चम्मच से भरकर खा रही थी। अब रश्मि रौनक को हंसते हुए देखकर उसके पास आती हुई बोली, भुक्कड़ कहीं की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुझे इतना सारा स्वादिष्ट खाना खिलाया और तुझे फिर से भूख लग गई? हाँ। तब रौनक ने एकदम से अपने दांत चमकाकर चुलबुली मुस्कान लाते हुए कहा, रश्मि दीदी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है और पता नहीं मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं बस कुछ ना कुछ स्वादिष्ट चीज़ें खाती रहूँ सच में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा इतना खाना कहाँ जा रहा है। ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई भूत बैठ गया है जो ये सारा खाना खा रहा है। जैसे ही रौनक ने मासूमियत से ये बताया, रश्मि खिलखिलाकर हंस पड़ी और वो उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई। लेकिन आहान नाराज होकर मन में चिढ़कर बोला, ये मेरे होने वाले बच्चे को भूत बुला रही है, आने दो मेरे बच्चों को, अपने बच्चों से ही मैं इससे इन बेतुकी बातों का बदला लूंगा। वहां दांत भींच कर मुंह बनाते हुए जैसे ये बात सोच रहा था, अब रश्मि और रौनक घूरकर आहान को देखने लगी, फिर एक दूसरे को देखकर नामे गर्दन हिला दी और सोचने लगी, लगता है आहान सिंघानिया पागल हो गया है, अपने आप ही न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। तभी रौनक चहकती हुई बोली, अरे दीदी, आप इसका इलाज क्यों नहीं करती हैं? आखिरकार रिश्ते में तो आपका भाई और देवर बहुत कुछ लगता है, देखो ना बेचारा कैसे अकेले बैठकर अपने आप में ही बुदबुदा रहा है। जैसे आहान को तपाने के लिए रौनक ने ये कहा, आहान तुरंत उठ खड़ा हुआ और बिजली किसी तेजी से रौनक के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से गुलाब जामुन छीनते हुए बोला, जस्ट शट अप, और तुम्हें ज्यादा गुलाब जामुन खाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हें नुकसान हो जाएगा, समझी तुम? ये बोलकर आहान उसके हाथ से गुलाब जामुन का पूरा बाउल ले लिया और उसे खाता हुआ वहां से जाने लगा। अब तो रौनक का मुंह बन गया और वो चिढ़ गई थी और अपने पैर पटकते हुए बोली, ये इंसान मुझे एक नंबर का जहर लगता है, आई जस्ट हेट हिम। ये बोलकर वो तेजी से दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई थी। वहीं रश्मि उन दोनों के झगड़े में अपना सर पकड़कर रह गई थी। दूसरी ओर अरमान सिंघानिया की कार सीधा उसके फार्म हाउस पर जाकर रुकी थी। आस्था ने वंशिका से बोलकर कार को थोड़ी दूरी पर पहले ही रुकवा लिया था, क्योंकि पैदल जाकर वो देखना चाहती थी कि आखिरकार अरमान सिंघानिया कहाँ जा रहा है। जैसे ही कार रुकी, आस्था ने देखा वहां पर तो Z+ सिक्योरिटी थी। कितने सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी वहां पर खड़े हुए थे और फार्म हाउस बहुत बड़ा था, इतना बड़ा तो सिंघानिया मेंशन भी नहीं था। अब तो आस्था और वंशिका दोनों ही हैरानी से उसे देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने कंधे उचका दिए और तब आस्था थोड़ा घबराते हुए बोली, वंशिका, अब हम क्या करें? अब हम अंदर जाकर कैसे उस लड़की को बचाएं? यहाँ पर तो काफी टाइट सिक्योरिटी है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी तो किसी PM या राष्ट्रपति के लिए भी नहीं होती होगी। तब वंशिका बेपरवाह अंदाज में बोली, तुम फिक्र मत करो, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। तभी आस्था सवाल भरी नजरों से वंशिका को देखने लगी, लेकिन अचानक वंशिका कार से बाहर निकली, क्योंकि वंशिका ने एक पूरी तरह से ट्रैक सूट वगैरह पहना हुआ था। अचानक से उसने कार से बाहर निकलकर अपनी ट्रैक सूट की जिप खोलनी शुरू कर दी थी। अब आस्था हैरानी से वंशिका को देखने लगी,
लेकिन अचानक वंशिका ने पूरा ट्रैक सूट निकालकर साइड में रख दिया था। इस वक्त वंशिका केवल शॉर्ट्स में वहां मौजूद थी। वंशिका ने अपने लंबे घने बालों को अपने कंधों पर फैला लिया और डार्क लिपस्टिक लगाकर उसने अपना ड्रेस थोड़ा नीचे खींच लिया और साथ ही साथ थाई तक अपनी शॉर्ट ड्रेस में वो बेहद हॉट लग रही थी। जैसे ही आस्था ने वंशिका को देखा, वो अपनी पलकें बार बार ऊपर नीचे झपकाने लगी। वंशिका का ये तरह का अंदाज उसे आज देखने को मिल रहा था। वंशिका सीरियस वॉइस में बोली, मैं इन लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ, बस तुम किसी न किसी तरह से मौका देखकर अंदर घुस जाना। तब आस्था को वंशिका का आइडिया अब समझ में आ गया था। तभी वंशिका एकदम हाई हील को बजाते हुए हाथ में एक ब्रांडेड फोन लेकर जल्दी ही सिक्योरिटी गार्ड के सामने जा पहुंची थी, क्योंकि अरमान तो अपने ग्रुप के साथ ऑलरेडी अंदर जा चुका था, तो सभी सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए थे। लेकिन वंशिका को वहां देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि इस तरह से यहां पर एक लड़की कैसे आ सकती है। अब वंशिका, जिसने अपनी गहरी आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था, वो चश्मा उतारकर बड़े स्टाइल में गार्ड से बोली, हेलो, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक फोटोग्राफी के लिए आई थी, लेकिन मैं यहाँ का रास्ता भूल गई हूँ और यहाँ पर मैंने इन जंगलों के बीच इतना बड़ा फार्म हाउस देखा तो मैं यहाँ आ गई। अब सिक्योरिटी गार्ड को उसकी बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा बड़ा था, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जवान लड़के लड़कियां मौज मस्ती के इरादे से, साथ ही साथ घूमने फिरने फोटोग्राफी करने के इरादे से यहाँ आते रहते थे। तब एक गार्ड उसे बोलता है, मिस, आप गलत जगह पर आ गई हैं और आपको अब यहाँ से जाना होगा। जैसे ही बॉडीगार्ड ने थोड़े डार्क वॉइस में ये बोला, वंशिका एक पल के लिए थोड़ा डरी थी। अनजान बनते हुए बोली, लेकिन डार्लिंग, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, प्लीज क्या तुम अपने किसी आदमी को मेरे साथ भेज सकते हो जो मुझे बाहर का रास्ता दिखा दे प्लीज, ताकि मैं अपने ग्रुप वालों से मिल सकूं। जैसे ही उसने सिक्योरिटी गार्ड को वंशिका ने डार्लिंग बोला, गार्ड के तो दिल में तूफान सा उठा गया था, क्योंकि वे लोग कितने ही सालों से फार्म हाउस पर ही रहा करते थे। वे लोग कभी भी वहां से बाहर नहीं गए थे और कोई लड़की ऐसे भटकते हुए तो कभी भी यहां ऐसे आई ही नहीं थी। यहां पर सिर्फ वही लड़कियां आती थीं जिन्हें सजा दी जाती थी।
अब वो गार्ड मुस्कुराने लगा। अब तक एक खूबसूरत लड़की को वहां देखकर जितने भी गार्ड थे वे सभी वहां जाकर जमा होने लगे। वंशिका को तरह तरह से घूर घूर कर देखने लगे। वहीं आस्था समझ चुकी थी कि ये अच्छा मौका है, क्योंकि जहां गुड़ हो उसके आसपास ही मक्खियां भिनभिनाएंगी ही, इसलिए किसी ने भी आस्था पर ध्यान नहीं दिया। आस्था ने भी, क्योंकि काले रंग के ही कपड़े पहने हुए थे, तो किसी की भी नज़र अंधेरे में आस्था पर नहीं पड़ी और आस्था आई ही आसानी से सबके नज़रों से बचते हुए उस फार्म हाउस के अंदर चली गई। वहीं वंशिका ने जैसे ही ये देखा कि आस्था अंदर चली गई है, तब वंशिका जल्दी से गार्ड की तरफ देखकर फेक स्माइल करते हुए बोली, चलो ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, मैं खुद ही चली जाती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका मालिक यहाँ आ जाए। जैसे ही वंशिका ने बातों बातों में मालिक का जिक्र किया तो अब सब लोगों की हवा टाइट होने लगी, क्योंकि कुछ पल के लिए वंशिका की खूबसूरती देखकर अरमान सिंघानिया को तो वे सब लोग भूल ही गए थे और फटाफट से हड़बड़ाहट से सभी लोग अपनी पोजीशन पर जाकर खड़े हो गए थे और अपना काम संभालने लगे। वंशिका एक पल के लिए उन बॉडीगार्ड को इस तरह से हड़बड़ाता हुआ देखकर मुस्कुरा उठी और फटाफट से वंशिका भी अब वहां से निकलकर वापस से आकर अपना ट्रैक सूट पहनकर कार में बैठ गई थी।